कभी सोचा नहीं था भगवान मिलेगा, स्वर्ग से भी सुंदर संसार मिलेगा। कभी सोचा नहीं था भगवान मिलेगा, स्वर्ग से भी सुंदर संसार मिलेगा। कभी सोचा नहीं था। देख संगम का आनंद हर गम चला गया, मिला मीठा परिवार ये एहसास हो चला। देख संगम का आनंद हर गम चला गया, मिला मीठा परिवार ये एहसास हो चला। उजड़े जहाँ चमन में फिर से फूल खिलेगा।
ओम शांति। आज का टॉपिक श्रेष्ठ अवस्था द्वारा श्रेष्ठ व्यवस्था। टॉपिक लेने के लिए हम सभी के सामने राजू भाई जी उपस्थित हो गए हैं, सभी ताली से तालियों से स्वागत करें। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। राजू भाई जी को सभी जानते हैं ना? हाँ, रोज हम सभी मुरली सुनते हैं, मुरली को कंपोज करके हम सभी तक पहुंचाते हैं, ये इनकी प्रयास है। और राजू भाई जी का संक्षिप्त परिचय दे देती हूँ। इनका असली नाम है राजेंद्र प्रसाद, छोटा नाम से पुकारते हैं राजू भाई यज्ञ में। आपका लौकिक जन्म उत्तर प्रदेश में कानपुर के पास एक छोटे गांव के आध्यात्मिक परिवार में हुआ। 1960 से इस ईश्वरी विश्वविद्यालय की गतिविधियां आपके ही लौकिक घर में शुरू से हुई तथा बचपन से ही योगी जीवन जीने का संकल्प किया। आप 1972 से प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के मुख्यालय माउंट अबू में समर्पित रूप से विभिन्न डिपार्टमेंट में अथक सेवाएं देते रहे। आप 1976 से दीदी मनमोहिनी जी के साथ हिंदी मुरली को कंपोज करने की तथा ईश्वरीय विद्यार्थियों के पुरुषार्थ को सरल बनाने के लिए सार रूप में वरदान अथवा स्लोगन के रूप में विशेष पॉइंट्स के द्वारा सर्व ब्राह्मण परिवार को विशेष सेवाएं दे रहे हैं। राजयोग एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन के कृषि एवं ग्राम विकास प्रभाग के आप अध्यक्ष हैं। अव्यक्त बाप दादा के सन्मुख मुरली श्रवण के साथ टाइप करके विश्व कोने कोने तक तत्काल सारे विश्व में पहुंचाने का आपका विशेष योगदान है। आप मुख्यालय के पांडव भवन, ज्ञान सरोवर तथा शांतिवन के फोटोकॉपी डिपार्टमेंट भी संभालते हैं। दादी जानकी जी के द्वारा मुख्यालय से जो प्रतिमास स्वोन्नति हेतु पत्र पुष्प निकलता है, जिसमें विशेष अव्यक्त इशारे, परमात्म प्रेरणाएं, दादी जी की प्रेरणाएं अथवा देश विदेश में चल रही ईश्वरीय सेवाओं का समाचार होता है, वह आप प्रकाशित करते हैं। इन सब सेवाओं के साथ साथ मुख्यालय से दादी जी के तरफ से पत्र व्यवहार करने का कार्य भी आप देखते हैं। और विश्व के चहुं दिशाओं में भ्रमण करते हुए आप यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, नेपाल, फिजी, मॉरिशस जैसे अनेक देशों में वैश्विक स्तर के महासम्मेलनों में संबोधित किया तथा टेलीविजन इंटरव्यू देकर विभिन्न देशों की आध्यात्म सेवाओं को गति प्रदान की। आपको परमात्म पिता द्वारा अव्यक्त रूप में विशेष दिव्य बुद्धि का वरदान मिला हुआ है। आपने ईश्वरीय महावाक्यों को संग्रहित कर समय प्रति समय अनेक पुस्तकें जैसे ज्ञान सरिता, ज्ञान सुमन, ज्ञान वीणा, ज्ञान के अनमोल मोती ऐसे थे ब्रह्मा बाबा, ये सब जानते हैं ना, आपने पढ़ी भी होगी ना। तो ऐसे थे ब्रह्मा बाबा और अव्यक्त मुरलियों का सार, जैसे अनेकों पुस्तकें लिखी। सतत ज्ञान अध्ययन के कारण आपकी बुद्धि में ईश्वरीय ज्ञान का खजाना से भरपूर है तथा आपने योग की गहन अनुभूति की है। अपने क्लासेस अथवा प्रवचनों के द्वारा आप अनेक आत्माओं को लाभान्वित करते हैं। आप वैश्विक स्तर के महासम्मेलन, सेमिनार और कार्यक्रमों के साथ राष्ट्रीय स्तर के विभिन्न अभियानों का कुशल संचालन कर रहे हैं। शाश्वत यौगिक खेती योजना और ग्राम दत्तक योजनाएं जैसी सेवाओं के लिए भी आप प्रेरणा स्रोत हैं। तो अपनी महान हस्ती से अब हम सुनते हैं राजू भाई जी। ओम शांति।
ओम शांति। बाबा के इस मधुबन घर में आप सभी बहुत अच्छी योग भट्टी का आनंद ले रहे हैं। मधुबन में रहने का भी भाग्य पहली बार आपको मिला होगा, कई लोग शायद पहले रहे होंगे, पुराने जो होंगे। शांतिवन और मधुबन और ज्ञान सरोवर, बाबा के विभिन्न स्थान और विभिन्न स्थानों की व्यवस्थाएं आप सभी ने देखी हैं, अनुभव की हैं। जो भी बाबा के नए नए बच्चे इस घर में आते हैं, ज्ञान और योग की क्लासेस का वर्णन कम करते हैं, लेकिन व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं, मैनेजमेंट बहुत अच्छी है, कितना वर्णन करके जाते हैं। जिससे मिलो ऑटोमेटिक सब कुछ चल रहा है, कोई इनको कोई कहता नहीं है, कोई डायरेक्शन नहीं दे रहा है, कोई बॉस नहीं है, ऐसे सब चलता है। आप सब देखते हैं, करने वाले तो बाबा के ही समर्पित बच्चे हैं, कुछ सेवाधारी आते हैं, लेकिन हमारी निमित्त दादियों की जो पालना है, जो उनकी श्रेष्ठ स्थिति है, ऊंची अवस्था है, मैं तो उनकी अवस्थाओं को ही श्रेय देता हूं। उस श्रेष्ठ अवस्था के आधार से आज इतनी अच्छी यज्ञ की सारी व्यवस्थाएं ऑटोमेटिक चल रही हैं, जिस पर हर एक आने वाला अनुभव करता है कि बहुत अच्छी तरह से हर प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। आपको कई मिसाल देकर के मैं आपको बताऊंगा कि आने वालों पर कैसे गहरी छाप पड़ती है। व्यवस्थाएं देख करके समय पर समय हम लोग यहाँ पर कोई न कोई सम्मेलन करते हैं, तो एक बार हमने यहाँ ज्ञान सरोवर में 5-7 साल पहले की बात है, एक ग्राम विकास का बहुत बड़ा सम्मेलन रखा था जिसमें बहुत अच्छे अच्छे VVIP जाए थे, गवर्नमेंट अधिकारी थे, कुछ पूसा से कृषि वैज्ञानिक थे, तो उनकी बुद्धि में बात नहीं बैठ रही थी कि योग और खेती का क्या कनेक्शन है। परमात्मा की याद से खेती इतनी अच्छी होगी कैसे, किस रूप से आप बताते हैं। तो मैंने देखा उनका लेक्चर्स में इतना इंटरेस्ट नहीं है, तो मैं 2-3 भाई जो मुख्य थे बड़े, उनको कहा कि चलो आज आपको हम अपने ज्ञान सरोवर के डिपार्टमेंट का सैर करा के लाते हैं आपको। तो उनको मैं 2-3-4 डिपार्टमेंट में ले गया, और जब वो डिपार्टमेंट के भाइयों ने उनको अपनी सब दिखाई व्यवस्थाएं, तो देख करके एक डिपार्टमेंट में ले गया जो हमारा सबका भाइयों का बहनों का रोज का यूज का फैंसी सामान उसको हम बोलते हैं, साबुन पेस्ट ब्रश चप्पल जूता जो स्टोर होता है। तो जब उस स्टोर में गए तो उस भाई ने एक एक चीज खोल करके दिखाई और उस पर पूरा कायदे से लिखा था कितने पेस्ट इतनी वैरायटी, इतने ब्रश इतनी वैरायटी। तो एक एक खुलता जाता दिखाता जाता, सबने कहा दिखाओ इनको, बड़े ऑफिसर से देखें तो कैसे व्यवस्थाएं होती हैं। तो देखने लगा एक एक चीज, उन्होंने सब गिनती सहित हर एक चीज अलग अलग कैसे व्यवस्थित रखी थी। पहले वो दिखाया, फिर जो मसालों का स्टोर था जहाँ पर सब प्रकार के हल्दी मिर्ची मसाले जब होते हैं उसका स्टोर था, वहाँ दिखाया जा करके। उसके बाद अनाज का स्टोर दिखाया और ऐसे तीन चार स्टोर केवल ज्ञान सरोवर के ही दिखाया। तो देखते गए, फिर मेरे से प्रश्न करते हैं कि आपने ये जो भाई यहाँ रखे हैं इनको कितना पैसा देते हैं। तो मेरे मुख से निकला इनको पैसा नहीं देते तो सब फ्री सेवा करते हैं। तो फ्री सेवा का नाम से तो ऐसे देखने लगे मेरी तरफ से, कहते हैं अगर गवर्नमेंट में इनको 2-3 लाख रुपया मास की पगार दी जाए तो भी ऐसा काम नहीं कर सकते। ये ऐसी व्यवस्थाएं कैसे हो रही हैं, इनको कौन डायरेक्शन देता है, कौन उनको बताता है सभा का। तो मेरे मुख से निकला कि ये सब अपने आप ही प्यार से बाबा का यज्ञ है, परमात्मा का कार्य है और सब अपना समझ के करते हैं, इसलिए समझते हैं कि हमारी जवाबदारी है और उस जवाबदारी के कारण सब चीजें व्यवस्थित होनी चाहिए। क्योंकि जब तक हमारी दादी जी, दादी प्रकाशमणि, किसने किसने देखा दादी जी को, बहुत हैं पुराने हैं, दादी जी की जो व्यवस्थाएं थी बहुत तेज दिमाग से बहुत तेज बुद्धि रख करके एक एक चीज पर नजर रखती थी। अगर कोई भूल से गलत लिख दे, शाम एक बार मास में या दो मास में अचानक कहती थी कि आपके डिपार्टमेंट में क्या क्या है, कितनी चीजें हैं और क्या और चाहिए आवश्यकता है वो लिख करके ले आओ। तो ऐसे जब हम लोग लेकर के पहुंचते थे तो दादी के ऐसे नजर पड़ती थी और कह देती थी ये गलत लिखा है, ये ठीक नहीं लिखा, ये हिसाब फिर से करके आओ। यहाँ तक भी उनको ये रहता था कि सिलाई मशीन में जो सिलाई करने वाले भाई हैं इनका जो स्टॉक है उसमें कितनी सुई और कितनी बटन है। इतना बुद्धि तेज थी और पूछ देती थी कितनी मंगाई थी तुमने, ये कहाँ गई, किधर चली गई, अचानक पूछ देती थी। तो एक नेचुरल आदत पड़ गई सबको संभालने की, सेवाओं को ठीक ठीक करने की, हर डिपार्टमेंट एक्यूरेट रहे, कोई चीज की कभी कमी न रहे, ऐसा कोई अचानक न कहे ये मेरे पास नहीं है, खुट गया, कम हो गया। तो एक व्यवस्थाएं एकदम एक्यूरेट रहे, बहुत अच्छी तरह से चले, समय पर सब कार्य निर्विघ्न रूप से चलते रहे, तो इसके लिए जितनी अच्छी व्यवस्थाएं होंगी उतना सारा कार्य व्यवहार एक्यूरेट होगा, आने वालों की अच्छी सेवा होगी। तो दादी जी का ध्यान ऐसा इस मधुबन के डिपार्टमेंट्स में रहता था और उसके बाद विस्तार हुआ, विस्तार भी दादी जी के होते ही हुआ। ज्ञान सरोवर दादी जी ने खुद खड़े होके बनवाया, फिर शांतिवन बना इतना बड़ा, व्यवस्थाएं होती गई, साधन बढ़ते गए, सेवाधारी बढ़ते गए, लेकिन सब कुछ होते हुए भी कोई भी आत्मा जो इस घर में आए उसको कोई भी प्रकार की तकलीफ न हो, कमी महसूस न हो, ऐसा हरेक डिपार्टमेंट इंचार्ज अपनी स्थिति भी इतनी अच्छी रखे और हर व्यवस्थाएं बहुत एक्यूरेट समय पर साथ दें, मदद करें, ऐसा न कहें कि दादी ये तो हमारे से पता नहीं था इतना खर्चा होगा, इतना चीज चाहिए, एक एक चीज का बहुत ध्यान रखती थी। तो आज हम देख रहे हैं कि इतना बड़ा यज्ञ, इतनी बड़ी व्यवस्थाएं, इतना कार्य कैसे चल रहा है। बाबा की तो ऊपर से नजर है ही, वो तो दिखाई नहीं देता, करण करावन हार बाबा करा रहा है, लेकिन जिनको निमित्त बनाया उनकी भी बहुत सारी विशेषताएं रही हैं, उनकी श्रेष्ठ अवस्था के आधार से मैं समझता हूँ ये सब व्यवस्थाएं आप सब जो देख रहे हो बहुत अच्छी तरह से चल रही हैं। मेरा ध्यान गया जब ये टॉपिक मुझे बहन जी ने बोली तो मैंने कहा अवस्था और व्यवस्था के साथ साथ आप इसके आगे लगा दो श्रेष्ठ अवस्था और श्रेष्ठ व्यवस्था, क्योंकि जैसी अवस्था होती है वैसी व्यवस्थाएं होती हैं। किसी किसी स्थान पर जाते हैं, किसी सेंटर्स पर जाते हैं, देख करके लगता है ये तो आश्रम नहीं है तो गृहस्थी जैसा लगता है। आश्रम और गृहस्थी में अंतर है, है? गृहस्थी में आप सब जानते हो कई चीजें व्यवस्थित नहीं होती, कई तो बड़े एक्यूरेट होते हैं, जो चीज जहाँ की है जिस स्थान पर रखी है जहाँ से यूज किया वहीं पर फिट सेट कर देंगे, व्यवस्थित कर देंगे, और कई स्थानों पर घर सारे चीजें सब ऐसे ही बिखरी पड़ी रहती है। काम किया, सब सेवाएं की और फिर व्यवस्थित जो चीज जहाँ की है वहीं रख दी जाए तो कहते हैं यहाँ की व्यवस्था बड़ी अच्छी है, सब साधन ठीक जगह पर रखे हुए हैं, कोई चीज एक ढूंढना पड़े तो ऐसा न लगे बहुत टाइम चला गया मिल नहीं रही है, कभी कभी जब जरूरत पड़ती है तो वो चीज होते हुए भी नहीं दिखाई देती, तो कहते हैं कहाँ रखा था, किधर रखा था, माना हमारी अवस्था कैसी है और उस अवस्था के आधार से हमारी व्यवस्था कैसी है। तो चाहे अपने लौकिक घरों की, चाहे आपके ऑफिस की जहाँ पर आप बिजनेस कर रहे हैं, नौकरी है, या जिस स्थान पर कोई ऐसा कार्य व्यवहार आपका चल रहा है, अगर वहाँ की व्यवस्थाएं ठीक नहीं दिखाई देती, सब चीज एक्यूरेट नहीं है, तो जरूर उस व्यक्ति की अवस्था डगमग करती है, हलचल में रहती है। जिसका मन बहुत शांत है, धैर्यवत है, बुद्धि ठीक स्वच्छ निर्णय देती है, समय पर निर्णय देती है, तो कार्य व्यवहार में कभी भी नीचे ऊपर नहीं होता, दिखाई देता है इसका कार्य बड़ा एक्यूरेट अच्छे से अच्छा चल रहा है, न खुद डिस्टर्ब होता है न दूसरों को डिस्टर्ब करने देता है। कई ऐसे स्थान देखे, मैं आपको एक दिन बताता हूँ, हमारी दादी जी 3 साल तक जब शांतिवन में रहने लगी तो 2004 के बाद ऊपर नहीं रही तबीयत के कारण, कुछ माउंट आबू का वेदर ऐसा होता जहाँ ऊंचाई के कारण ऑक्सीजन भी थोड़ी कम होती और जिनकी सांस की प्रॉब्लम होती है उनको ज्यादा तकलीफ हो जाती है, तो दादी जी 3 साल तक ऊपर नहीं आई। और जब एक दिन ऐसे ही हम लोग रोज जाते थे दादी से मिलने के लिए, तो एक दिन मेरे को अपने बाजू में बिठा के बोलती हैं, सब ठीक चल रहा है, ऐसे ही पूछा बड़े प्यार से। मैं कहा दादी सब बहुत अच्छा चल रहा, ठीक चल रहा है, सब व्यवस्थाएं ठीक हैं? मैंने कहा हाँ दादी सब ठीक है, एक एक चीज नाम से पूछती गई, जान सरोवर में ठीक है, सब ठीक चल रहा है, जाते हो कभी मिलते हो लोगों से, पांडव भवन ठीक है, क्या क्या चल रहा है, कैसे सब पूछती रही ऐसे एक एक चीज, तो मेरे मुख से बार बार यही निकला जब कि दादी सब ठीक चल रहा है, सब ठीक चल रहा है, तो अचानक पूछती है कैसे ठीक चल रहा है, तो मेरे मुंह से निकला कैसे दादी, बाबा के द्वारा और आपकी दादियों की संकल्प शक्ति के द्वारा, आपके शुभ संकल्प से इतनी बड़ी कारोबार सब ठीक चल रही है, जहां जहां सेवाओं का विस्तार हो रहा है वो सब अपने आप एक्यूरेट कर रहे हैं। तो जब मैं बोला आपके संकल्प शक्ति से तो मेरे को आंख दिखाती, मेरे संकल्प से शक्ति थोड़ी, बाबा के संकल्प, बाबा करावनहार है, बाबा करा रहा है, बाबा का यज्ञ है, बाबा के बच्चे हैं, कभी भी उनके वाणी में उनके बोलचाल में मैं कर रही हूँ ये शब्द ही नहीं रहे, मैं को उन्होंने जड़ से समाप्त किया हुआ था, इतनी अच्छी अवस्था अंदर से बनाई हुई थी, ये सारा यज्ञ बाबा के हाथ में है, करण करावनहार बाबा है, ये तो सब निमित्त मात्र हैं। तो अपनी अवस्था को एकदम निर्संकल्प बनाने के लिए, निर्संकल्प अवस्था आप समझ सकते हो, जिसके पास इतनी सारी ढेर जवाबदारियां हो वो निर्संकल्प रह सकता है? और दादी जी से अगर कोई इंटरव्यू लेता था पूछता था दादी इतनी बहनें हैं इतनी बड़ी आपकी कारोबार चलती है, इतने सेंटर्स खुलते जाते, कभी कुछ नीचे ऊपर भी होता है, कहीं कहीं आप समाचार सुनती हैं, उसका हल करती हैं, आपको नींद आती है? नींद आ जाती है? तो दादी बड़े प्यार से कहती थी, भाई नींद तो मेरे को इतनी अच्छी आती है कि मैं जब बिस्तर पर जाती हूँ ना, बाबा को कहती हूँ बाबा गुड नाइट, और तकिया पर ऐसे ऐसे रखती हूँ और सो जाती हूँ, मुझे एक मिनट भी नींद करने में टाइम नहीं जाता। ऐसी निसंकल्प अवस्था, आप सोचना, जब सब कुछ बाबा का यज्ञ है, बाबा का कार्य है, कराने वाला वो है, हमें सिर्फ निमित्त रखा है, तो अवस्था कितनी निसंकल्प हो गई, निश्चिंत हो गई, एक रस हो गई, अचल अडोल। अच्छी और श्रेष्ठ अवस्था किसको कहा जाता है? क्या हम सब ने अपनी ऐसी श्रेष्ठ एक रस निश्चिंत अवस्था बनाई है? मेरा प्रश्न ये है, बनाई है कि कोई भी छोटी मोटी हलचल हो जाती, परिवार में हो जाए, समाज में हो जाए, कोई नौकरी धोकरी में हो जाए, कोई बिजनेस में नीचे ऊपर हो जाए, क्या हाल होता है? कितना टेंशन होता है, कितनी हलचल होती है, किसको सुनाऊं, किसको बताऊं, किससे सहयोग लूं, क्या करूं, कैसे करूं, अनेक प्रश्नों में उलझ जाते हैं या एकदम सुलझे हुए हैं, सब अच्छे से अच्छा होगा। कितना अच्छा ज्ञान बाबा ने दिया और उस ज्ञान को इतना अच्छा दादियों ने अपने जीवन में उतार लिया कि ड्रामा बहुत 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 कल्याणकारी है, इसके हर सीन में बड़े कल्याण छिपे हुए हैं, राज छिपे हुए हैं। इसलिए कोई भी बात अगर नीचे ऊपर दिखाई भी देती तो वे मेरी अवस्था को हिलाए नहीं, डगमग नहीं करे, मैं अपनी स्थिति को बहुत अच्छी तरह पार, तो सब बातें हो जाती। जो बात आती है, जो परीक्षा आती है, परीक्षाएं कितने समय के लिए आती है? एक दिन, दो दिन, चार दिन, पार हो जाती। लेकिन परीक्षा देने वाला व्यक्ति अगर उस समय घबरा जाए, कांप जाए, डर जाए, तो क्या होगा? फेल हो जाएगा। तो हर एक के आगे कोई न कोई कलयुग के अंदर बातें तो आती हैं, परीक्षाएं आती हैं, लेकिन जिन्होंने अपनी ज्ञान और योग से अवस्था बहुत मजबूत बनाई है, एक रस बनाई है, उनकी अवस्था ही उनकी सब व्यवस्थाओं को ऑटोमेटिक ठीक कर देती है, अच्छा कर देती है, सब कार्य अपने आप ठीक हो जाते हैं। बाबा अपने बच्चों की अवस्था को एक रस बनाने के लिए इतनी मेहनत कर रहा है। जितनी मुरलियां बाबा की चलती हैं, आप ज्ञान और योग की गहराई देखो, मुरलियों की गहराई में जाओ, सबके पीछे इसेंस क्या है? सारी मुरलियों के पीछे इसेंस यही है कि बड़ी शांतमय, गंभीरमय, एक रस स्थिति बना लो। जब ड्रामा में सब अच्छे से अच्छा होने वाला है तो क्यों आप हलचल में आकर के अपनी स्थिति को डगमग कर लेते हो, क्यों प्रश्नों में उलझ जाते हो? तो हमने देखा दादियों की बहुत श्रेष्ठ और शुभ भावनाएं थी और सचमुच उसी शुभ भावनाओं की शक्ति के आधार से, उनकी श्रेष्ठ अवस्था के आधार से आज यज्ञ की सब व्यवस्थाएं, इतने बड़े यज्ञ को कोई भी अभी बड़ा कहने वाला नहीं है, कोई किसी को डायरेक्शन देने वाला नहीं है। पहले तो दादियां थी, पालना मिली हम सबको, बहुत अच्छी पालना मिली, एक एक बात के लिए मिली, लेकिन अब समय वो नहीं रहा। पहले पता है, अगर हम एक दिन अमृत वेला मिस कर दें, एक दिन मुरली क्लास में ना आए, तो दादी कैसे आंख दिखाती होंगी, प्यार से बुला करके कहती थी तुम्हारी तबीयत ठीक है, नाश्ता किया है, सैर किया, सब कुछ किया और क्लास में नहीं थे, आज कहाँ थे अमृत वेले। ब्राह्मण जीवन में अगर कोई बाबा का बच्चा बन करके अगर इसमें अलबेला है, मुरली नहीं सुन रहा है, योग नहीं कर रहा है, सिर्फ सेवाओं में आगे बढ़ता जा रहा है, सेवाएं तो करने की बड़ी हाबी होती है, कई आते हैं बाबा के, आते ही बच्चे लग जाते सेवा में, अच्छा है, सेवाओं से दुआएं मिल जाती। लेकिन अगर थोड़ा सा भी मान सान नहीं मिला, कोई ने कुछ कह दिया, क्या होता है, सोडा वाटर, अभी अभी बड़ा खुशी, बहुत नशा, और अभी अभी एकदम हवा निकल गई गुब्बारे की। तो ध्यान रखना कि अगर हमारा ज्ञान और योग का अच्छा फाउंडेशन है, अच्छा चिंतन है, श्रेष्ठ चिंतन ही श्रेष्ठ अवस्था बनाने का आधार है। बहुत अच्छा श्रेष्ठ चिंतन करो, सब कुछ अच्छे से अच्छा हुआ है, होना ही है। और इतना अच्छे श्रेष्ठ चिंतन के आधार से बहुत शुभ भावनाओं के संकल्प, दादी जानकी को आप देख रहे हो, शुभ भावनाओं के संकल्प से आज उन्होंने अपने इस प्रकृति को भी जीता है, प्रकृति को जीता है। हम तो ये दादी को देखते हैं, प्रकृति कितने भी नाज नखरे करे, शरीर कैसा भी हो, मैं आपको आज की एक मास पहले की बात सुनाता हूँ। दादी को 12 दिन तक इतनी तकलीफ थी पेट की, और इतना तड़फ रही थी जैसे कोई दर्द में तड़फता, ऐसा व्यक्ति ऐसा लगता था, बहुत दर्द है दादी को। तो यहाँ से दादी को अहमदाबाद ले गए, सेंटर पर ही रही, मैम नगर में हॉस्पिटल में नहीं रखा, सेंटर पर ही रही। डॉक्टर आते गए, इलाज किया पेट। तो मैं गया, उस समय मैं जा रहा था पूना, तो दादी से मिलने गया, मिली दादी बहुत प्यार से। तो हमने कहा, दादी आपकी तबीयत तो भी ऐसी है, आप कहीं जाना नहीं, आप यहीं रहो, हम पूना आपकी तरफ से जाते हैं, वहाँ हम क्लास करा के आते हैं सबसे मिल। हाँ हाँ जाओ जाओ, भेज दिया मेरे जगदम्बा में। मैं वहां से वापस जब तक आऊँ तब तक दादी लंदन चली गई, वहीं से यहाँ भी नहीं आई, अहमदाबाद से ही ठीक हुई और ठीक होकर के लंदन चली गई, और लंदन में एक मास के लगभग रही, और उसके बाद रसिया चली गई, और रसिया से आई, रसिया से दिल्ली उतरी, दिल्ली से मुजफ्फरपुर चली गई, और मुजफ्फरपुर में 3-4-5 प्रोग्राम किए 2 दिन में, 1.5 दिन में, और कल शांतिवन में क्लास करा रहे थे। हमका दादी एनर्जी आई कहाँ है, कहाँ से आ रही है, 102 साल की अवस्था, 103 साल होने वाले हैं एज के, शरीर में कुछ नहीं है, लेकिन आत्मा कितनी शक्तिशाली, कितनी पावरफुल है, जरा भी उनको ये नहीं लगता है कि मैं थक गई हूँ, मेरी बड़ी आयु है, मुझे तो रेस्ट करना चाहिए, मुझे तो सो जाना चाहिए। नहीं नहीं, जहाँ सेवा है वहाँ मैं हूँ, बाबा जो करा ले कर लो, कल किसने देखा। तो उन्होंने अपनी अवस्था को इतना पक्का, मजबूत, एक रस बनाया हुआ है, जो प्रकृति की कितने भी नीचे ऊपर हलचल हो, कैसा भी शरीर हो, लेकिन विजय प्राप्त की, प्रकृति जीत आत्मा बन गई। और ऐसी अवस्था के आधार से सब व्यवस्थाएं ऑटोमेटिक चलती हैं, कहना नहीं पड़ता है कि आपको ये करना चाहिए। सब डिपार्टमेंट बटी हुई है, सबको सेवाएं मिली हुई है, सब एक्यूरेट कर रहे हैं, सिर्फ दादियों ने 3 बातों का ध्यान रखा, अवस्था को ठीक रखने की, अपनी अवस्था को ठीक रखने की, व्यवस्थाएं अपने आप ठीक हो जाएंगी। पहला ध्यान रखा, अपनी श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति उसमें जरा भी व्यर्थ और नेगेटिव प्रवेश न करे, बहुत शुभ भावनाओं से संपन्न, सब अच्छा होगा। एक बार कोई ने करेक्शन किया दादी को, बड़ी दादी थी उस समय, दादी को बोला, दादी ये हो रहा है, ऐसा हो रहा है, आप ध्यान दो थोड़ा सा। तो दादी ने पता क्या जवाब दिया होगा, बड़े रमणीकता से बोला कि जो 95% अच्छा हो रहा है उस पर तुम्हारा ध्यान नहीं गया, और 5% जो कोई नीचे ऊपर हो रहा है उस पर ही ध्यान गया तुम्हारा। इतना अच्छा सब बाबा करा रहा है, 95% सब ठीक चल रहा है, 5% कुछ न कुछ तो कोई न कोई नीचे ऊपर करता है, कोई के संस्कार हैं, कोई के स्वभाव, कोई के हिसाब किताब, कुछ होता है। तो जब 95% सब अच्छा चल रहा है तो उसको अच्छा ही कहेंगे, 5% क्यों कमी कमजोरी देख रहे हो, सब ठीक हो जाएगा। इतना श्रेष्ठ और शुभ संकल्प से संपन्न स्थिति ही श्रेष्ठ अवस्था की निशानी है। दूसरी बात, हम उनकी जीवन की जो नोट करते आए हैं वो रही है, बहुत मधुर व्यवहार, सम्मानजनक बोल, कभी भी अपने बोल से किसी को अपमानित नहीं किया। कोई गलती करके भी आया, कोई नुकसान करके भी आया, लेकिन उनके बोल में कोई कटुता नहीं दिखी, कोई उनके प्रति नफरत की भावना नहीं दिखी, बहुत सम्मानजनक बोल बोल करके, अच्छा ये हुआ आगे के लिए ध्यान रखना, इतना कहा आगे के लिए ध्यान रखना बस, क्यों किया, कैसे हुआ, ऐसा नहीं करना चाहिए तुमको, नहीं हो गया जो हो गया, बीती की बात को भूल जाओ। और ऐसी अवस्था का प्रभाव डाला कि जो उनके बोल में मिठास रही, सम्मानजनक बोल रहे, आगे बढ़ाने की भावना रही, ऐसा भी नहीं कहा इसको इस सेवा से छुड़ा दो, इसने इतना नुकसान कर दिया इसको इस सेवा से छुड़ा दो, नहीं नहीं ठीक हो जाएगा, सीख जाएगा, सीख जाएगा। इतनी श्रेष्ठ भावना के साथ साथ जो मधुरता थी व्यवहार की, वो व्यवहार में जो सरलता थी, मधुरता थी, उससे सबके अंदर व्यवस्थाओं को ठीक करने की हिम्मत आ गई। जहां तक मैंने नोट किया कि आज जो सभी बहुत एक्यूरेट सब करना चाहते हैं, हमसे सब अच्छे से अच्छा ठीक हो, उसका कारण है बड़ों का विश्वास, और उस बड़ों के विश्वास के आधार से आज यज्ञ इतना आगे बढ़ा है, व्यवस्थाएं इतनी अच्छी हुई हैं। तो उन्होंने किसी पर ये नहीं कहा कि ये जो इसको डिपार्टमेंट दी गई है ये ठीक नहीं संभाल पाएगा, कहां से सीख के आएगा, सीखेगा, एक दो बार गलती करेगा सीख जाएगा। ये जो उन्होंने विश्वास रखा, जो भावनाएं अपनी रखी, उसके आधार से उसको ठीक व्यवस्था करने के लिए बल मिल गया। और तीसरी बात, जहां तक हमने नोट की है, मधुर वाणी के साथ साथ सम्मानजनक बोल के साथ उन्होंने एकदम सब बच्चों को समान दृष्टि से देखा, समभाव रखा, और समभाव के कारण सबको समानता का व्यवहार किया। कोई चीज किसी को देने लेने में भी सब प्रकार की खातरी हो, सब प्रकार का सब सुविधाएं मिले हर एक को। अगर कोई ने कोई मेहनत की है तो उसी समय उसको रिस्पेक्ट के साथ कुछ सम्मानजनक शब्दों के साथ साथ कुछ रिटर्न देना, और रिटर्न दे करके उसको और प्रोत्साहित करना, उससे कोई पुरस्कार दे करके प्रोत्साहित किया जाता। ऐसे ही हमारी दादियों ने भी विधि अपनाई कि अगर कोई ने कोई अच्छा कार्य किया है तो उसको समय पर समय प्रोत्साहित करके, प्रोत्साहन दे करके उसको आगे बढ़ा देना, तुम बहुत अच्छे, बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छा किया। करेक्शन देने की विधि क्या थी, करेक्शन जरूर किया होगा, ऐसा नहीं किया, गलत हो रहा है तो हाँ उसमें भी ठीक करे, लेकिन करेक्शन करने की विधि बड़ी वंडरफुल हमने देखी। सब बातें जैसे बाबा करेक्शन करता है, देखा है कैसे करता है, बाबा की मुरलियों में हमारे लिए बहुत करेक्शन होती है, लेकिन मुरली सुनाने का जो तरीका है बाबा का, शायद जो उन्होंने गहराई से अध्ययन किया होगा, देखा होगा कि 90% मुरली चलती है बच्चों की विशेषताओं पर, बहुत अच्छी तरह से विशेषताएं सुना सुना करके फिर एक दो शब्दों में कोई इशारा देता है, जिससे उसको ये लगे कि इसको महसूस हो जाए। वैसे भी बाबा एक बड़ी अच्छी विधि बताते हैं कि अगर बीज को ऐसे ही डाल दिया जाए, धरनी तैयार न किया जाए, तो बीज फलीभूत नहीं होता, या तो सूख जाएगा या चिड़िया खा जाएंगी। अगर बीज को गहराई तक डाला जाए, उस पर ध्यान दिया जाए, उसके लिए पहले धरनी तैयार करनी पड़ती है। तो किसी भी व्यक्ति को अगर कोई शिक्षा सावधानी देनी भी है, डायरेक्ट आप दे देंगे तो कभी भी स्वीकार नहीं करेगा, जैसे बीज ऐसे ही आपने डाल दिया वो ऐसे ही नष्ट हो जाएगा। अगर उस बीज को फलीभूत बनाना है, उसके जीवन में परिवर्तन लाना है, तो आपको उसकी बहुत अच्छी विशेषताओं का वर्णन करना होगा। पहले उसकी धरनी तैयार करो, ग्राउंड बनाओ। तो दादियों ने, बाबा ने बहुत अच्छी विधि बनाई कि अगर हम सबको कोई इशारा देना भी है तो इशारा जरूर दिया, लेकिन इशारा देने के पहले आप तो इतने अच्छे हो, आप तो ऐसा ऐसा कार्य करते हो, आपके अंदर ये विशेषताएं हैं, ये क्वालिटी हैं, ये क्वालिटी हैं, सब कुछ वर्णन करके बाद में कहेगा ये एक छोटी सी बात है, इसको चेंज कर दो तो अच्छा है, हो सकता है ऐसे पूछे, हो सकता है। हाँ दादी, हो जाए। तो तरीका देखो, अगर हम किसी को कोई बात कहते हैं तो अपनी श्रेष्ठ अवस्था अगर बना करके फिर कही जाए। अगर वो खराब कर रहा और मैं गुस्सा कर रहा हूँ, कह कहते हैं ये झूठ बोल रहा है, मुझे गुस्सा आ रहा है, क्यों झूठ बोलता है? अरे वो झूठ बोल रहा है तुम गुस्सा करो, दोनों बराबर हो गए, झूठ बोलने वाले से भी गुस्सा करने वाला और खराब खतरनाक हो गया। इसलिए बाबा ने हमें क्या सिखाया, अगर वो झूठ बोल रहा हो तुम गुस्सा कर रहे हो तो दोनों फेल, उसके झूठ को सुनो, शांति से योगदान दो, फिर उसको इशारे में बताओ, समझ जाओ, उसे किनारा कर लो, गुस्सा करके अपनी स्थिति को बिगाड़ना नहीं। तो हर व्यवस्थाएं ठीक हो सकती हैं जिसने अपनी अवस्था पर ध्यान दिया है। अवस्था पर ध्यान दे करके मैं आपको ये बातें इसलिए सुना रहा हूँ, यज्ञ से कनेक्टेड है, और मैं कम से कम 46 साल तक इस यज्ञ में दादियों के बहुत बहुत समीप रहा हूँ। एक एक बात में, सेवाओं के क्षेत्र में, जो इंटरनल कारोबार है पत्र व्यवहार की, उसके बीच में रह करके देखा इन दादियों ने अपने को कितना निर्माण चित्त बना करके बहुत नम्रता के साथ झुक करके चली और सबको झुका दिया। ये उनकी अवस्था की निशानी थी। हम लोगों को ऐसे सिखाया, हम तो छोटे छोटे आए थे, मैं आपको बचपन अपना बताता हूँ। मैं आया था 15 साल का, 16 साल हुए, दादी ने पहले तो मना कर दिया, नहीं रहना यहाँ, छोटे हो अभी और 3 साल 4 साल पढ़ो। मेरे मुख से निकला, दादी 4 साल में तो विनाश हो जाएगा। तो दादी हंसने लगी, बोली विनाश तो हो जाएगा लेकिन अभी तुम्हारी एज छोटी है ना, अभी पढ़ने की उम्र है, पढ़ लो। नहीं दादी, हमारे पिताजी कहते हैं 76 में विनाश हो जाएगा, 72 तो आ गया, अभी 4-5 साल में पढ़ के मैं क्या करूंगा। तो हंसने लगी, कहती नहीं अच्छा 1 साल तो पढ़ लो, बहुत प्यार से 1 साल तो पढ़ लो, ठीक है दादी। फिर जब आए हाई स्कूल पूरा करके 72 में आ गए मधुबन, तो मधुबन में आए तो ड्रामा अनुसार एक लगन थी पढ़ाई की ही, तो मैंने ऐसे ही एप्लीकेशन दिया कि मैं टाइप सीखूं दादी। तो टाइप सिखाने के साथ साथ बोली तुम सिंधी सीख सकते हो, हमने कहा सीख लेंगे, सिंधी सिखाई, सिंधी सीखी, फिर टाइप सीखी, फिर कहती अच्छा जब तक तुम टाइप की डिपार्टमेंट हो तब तक बाबा जब आते हैं, अव्यक्त बाबा शाम को आते थे सुबह 7 बजे 6 बजे तक, 12 घंटा 13 घंटा बैठ जाते थे रात भर, तो यीशु दादी पहले नोट्स लेती थी बाबा के साथ बैठ करके, तो बोला वो अकेली बैठती है थक जाती है, तो कभी तुम बैठो कभी वो बैठे, उनको और अच्छा इससे भाग्य क्या होगा। तो जब बाबा कमरे में आते थे, छोटे हाल में आते थे, जहां भी आए वहां पर बाबा के बाजू में बैठ करके लिखने का मुझे चांस मिला, नोट्स लेने का चांस मिला। जब नोट्स लेते थे तो दूसरे दिन, एक दिन बाबा आते थे, दूसरे दिन दादी कहती थी क्या क्या नोट्स लिया तुम सुनाओ, क्लास में आके सुनाओ। सिखाया कैसे, आप समझ सकते हो कि अगर गुरुडम होती तो गुरु के सामने गद्दी पर बैठने वाली गुरुडम की सीट, उसके सामने कोई बैठ सकता है? हमने देखा कि जब हम क्लास में आते थे डायरी लेकर के, तो दीदी दादी दोनों ऐसे सामने बैठती थी, क्योंकि एक सोफा नहीं था, एक कुर्सी नहीं थी, यहाँ छोटे हाल की बात है, कुर्सी सोफा नहीं थी, अभी सब हो गए, तो मुझे गद्दी पर बिठा दिया और खुद नीचे बैठ गई, तो मेरा हाल क्या होता होगा। पहले तो एकदम पसीना निकल जाता था, घबरा जाता था, इनके सामने मैं क्या बोलूं, अरे नहीं 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 तुम बोलना बहुत अच्छा, सुनाओ क्या लिखा तुमने, सुनाओ सुनाओ, ऐसे ऐसे आगे बढ़ाने की भावना, दूसरों को आगे बढ़ाने की भावना। कभी भी ये नहीं आया मैं तो बड़ी हूं, ये क्या कल का आया हुआ मुझे पढ़ाएगा, स्टेज पर बैठ करके मुझे सुनाएगा, नहीं नहीं, एक एक बात सिखाई, एक एक बात पढ़ाई, और कभी ये नहीं कहा कि इसकी महिमा हुई या इसकी महिमा हुई। आज अगर सेवा केंद्रों पर एक बहन की महिमा हो जाती तो दूसरी बहन का क्या हाल होता है। कहीं पर भी है, बहनों की बात नहीं है, किसी भी क्षेत्र में आप देख लो, अगर कोई थोड़ा सा आगे बढ़ने लगता है तो उसे कितनी ईर्ष्या, कितनी द्वेष, कितनी भावनाएं बदल जाती, उसको कैसे गिराया जाए, उसको कैसे नीचे किया जाए। लेकिन हमारी दादियों ने इतनी निर्माणता से इस यज्ञ को आगे बढ़ाया कि कोई भी बहनों में, कोई भी भाइयों में, कोई भी विशेषता से वो आगे बढ़े, अगर उनकी कोई ने उनके आगे महिमा की तो उन्होंने यही कहा, ये तो बाबा की महिमा है, ये तो बाबा के बच्चों की महिमा है, इनकी महिमा माना मेरी महिमा। ऐसे नहीं कहा इनकी क्यों महिमा होती है, मैं तो हेड बैठी हूं। बहुत नम्रता से, निर्माणता से, निरहंकारिता से, ऐसी अवस्था बना करके उन्होंने इस यज्ञ को आगे बढ़ाया। तो हम सभी भी अपनी व्यवस्थाओं को, अपने परिवार की व्यवस्थाओं को, अपने किसी भी क्षेत्र में अगर इन गुणों को अपना लें, कोई का आगे बढ़ना हमारा आगे बढ़ना है। बाबा ने सदा यही रखा आगे साकार ब्रह्मा, बाबा के शब्दों में आप सुनेंगे हमेशा बाबा ने एक शब्द यूज किया, बच्चे पहले आप, पहले आप। कभी भी महिमा स्वीकार नहीं की, कोई ने निंदा की, कोई ने स्तुति की, कोई ने कुछ किया, कोई ने कुछ किया। बाबा के सामने तो सब प्रकार की बातें बड़े बड़े रूप में आई, छोटे रूप में थोड़ी आई, बहुत बड़े बड़े रूप में आई। पर बाबा ने इतना सरलता के साथ, बच्चे सब निर्दोष हैं, कोई इनका दोष नहीं है। अगर आज कोई के आगे थोड़ा सा कोई गलत बोल के चला जाए, कितना अपमान महसूस होता, कितना गुस्सा आ जाता, कितना तुरंत ज्ञान ध्यान सब भूल जाता, ये मेरा अपमान करता है, मुझे पहचानता नहीं है। और बाबा तो एकदम निरहंकारी, निम्रचित, निर्माण चित्त होकर के कहते थे, बच्चे इनका दोष नहीं है, ये पहचानते नहीं है, अभी माफ कर दो, कोई बात नहीं, भूल जाओ। बाबा के सामने एक बार कोई ने अखबार में बहुत गलत गलत लिखवा दिया, उल्टा सीधा ब्रह्मा बाबा के लिए ही कहा, तो बाबा हीरे जवाहरात का बिजनेस करने वाला, और अखबारों में लिखा दिया कि बाबा की साइकिल की दुकान थी, और ऐसा लिख करके अखबारों में छाप दिया। तो अखबार जब देखा, हमारी परदादी थी निर्मल शांता दादी, बाबा की बेटी, उसको बड़ा आया जोश कि हम तो इसके ऊपर मान हानि का केस कर देंगे, हमारे बाप के लिए ऐसा ऐसा लिखा है उल्टा सीधा। लेकिन बाबा के बिना पूछे कोई कुछ नहीं कर सकता था, तो बाबा को उसने पत्र लिखा, बाबा ऐसे ऐसे देखो अखबार में उल्टा सीधा लिखा है, मैं तो इसके ऊपर मान हानि का केस करने जा रही हूँ। बाबा बड़े प्यार से कहता, बच्ची उस अखबार वाले का क्या नाम है? तो बोलती है, उसका नाम है विश्वामित्र अखबार। बोला, उसको बहुत प्यार से लिखो, तुम तो विश्वामित्र है तो हमारा कैसे ग्लानी करेगा, तो हमारा भी परम मित्र है, उसको कभी भी केस नहीं कहना। बच्चे इनको पता नहीं है ना ब्रह्मा बाबा के बारे में, जरूर कुछ न कुछ उल्टा बोलेंगे, कोई हर्जा नहीं। इतना धैर्यता से, नम्रता से, सरलता से उसको शांत कर दिया। बाप बच्चे पर क्या उसने केस नहीं करेगा, और विश्वामित्र अखबार है, वो तो सबका मित्र है ना, तो निंदा हमारी जो करे, मित्र हमारा सो, लिख दो बच्चे। तो ऐसे ऐसे बाबा बहुत धैर्यता से, कितनी अच्छी अवस्था होगी। मैं तो कभी कभी सोचता हूँ कि हमारी दादियों ने, बाबा ने कितनी ऊंची अवस्था बना करके यज्ञ को इतना व्यवस्थित किया है। ऐसे यज्ञ इतना व्यवस्थित नहीं है, हर जगह कितनी मैनेजमेंट, कहीं कहीं जाते हैं सेंटर देखते हैं कितना मैनेज, इतने अच्छी ढंग से आपको कोई चीज की असुविधा नहीं होगी। सब प्रकार के साधन, सब प्रकार की सुविधाएं, भले छोटा सेंटर है लेकिन सब व्यवस्थित है। एक सेंटर पर मैं गया कुछ दिन पहले की बात है, मैं समझता हूँ 20-25 बहने भाई समर्पित थे उस सेंटर पर, दो मकान थे संभालने वाले। मुझे कहती, आप मकान देखेंगे? हमने कहा हाँ, मैं पहली बार गया तो हमने कहा देखेंगे, पहले मकान देख लेते हैं। जब चक्कर लगाया तो भंडारे में ले गई तो एक चीज भी बाहर नहीं थी, तो मैंने कहा यहाँ खाना नहीं बनता है क्या? नेचुरल पूछूंगा, खाना नहीं बनता है, इतने लोग खाते कहाँ है? बोली, भाई जी बनता है, खाना तो अभी बन चुका, खा लिया सबने। खा लिया नहीं, एक बर्तन दिखाई देता है, न एक कोई सब्जी का टुकड़ा दिखाई देता है, आखिर कुछ तो होना चाहिए बाहर। कहती, हमने बहनों को इतनी अच्छी ट्रेनिंग दी है, काम पूरा हो गया उसी समय सफाई कर लो, उसी समय मांज दो, बर्तन साफ कर दो, जहां से निकाला था वहीं सेट कर दो। इतना साफ स्वच्छ सेंटर था, और उसका कितना प्रभाव पड़ता होगा, क्योंकि कहते हैं एक कहावत है, जहां स्वच्छता है वहां प्रभुता है। बाबा का वहीं पर निवास है जहां स्वच्छता है। अगर हम बाबा को अपने घरों में बुलाना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा? स्वच्छता पर तो जरूर ध्यान देना, भले प्रवृत्ति कैसी भी। आजकल घर बढ़ते जाते, परिवार बढ़ते जाते हैं, और कई जगह पर है पति पत्नी ज्ञान में चलते हैं, बहू बेटे नहीं चलते। अब एक ज्वाइंट फैमिली है, अलग भी नहीं किया जा सकता। इतना सहारा गृहस्थी जैसा वातावरण होता, अगर उस घर में कोई जाए, बाबा का कास्केट लगा है, बाबा का फोटो लगा है, एक तरफ कहते हैं बाबा का कमरा बना के रखा है, ये है, लेकिन सब कुछ देखो तो इधर भी खड़ा पड़ा है, बिस्तर पर सब सामान पड़ा हुआ है, बाथरूमों में ऐसे जाओ तो क्या क्या लगा पड़ा है, कोई व्यवस्था नहीं है, सब कुछ व्यवस्थित था। हम सब बाबा के बच्चे ध्यान रखें, जहां पर तीन बातें, और तीन बातें मैं सुनाता हूं। घरों को एक शुद्ध व्यवस्थित बनाने के लिए एक सबसे बड़ी है स्वच्छता, और स्वच्छता के लिए जो चीज जहां पर है, एक तो घर को गोदाम नहीं बनाना, कई लोग घर को गोदाम बना देते हैं, समझ रहे हैं घर को गोदाम क्या कह रहा हूं मैं, समझ रहे हैं, जरूरत नहीं है। हम गए मंडी के अंदर, हम गए मॉल के अंदर, हम गए इधर, देखा है थोड़ा सस्ता मिला है, सेल लगा हुआ है, भाई कभी तो काम आ जाएगा, सस्ता है ले लो, और इकट्ठा करके सब चीजें इकट्ठा करके घर में भर दिया, जरूरत नहीं है, 5-6 महीना 8 महीना यूज नहीं करेंगे, लेकिन सब चीजें जो सस्ती दिखाई दी, जो इधर उधर की आई, लेकर के घरों में रखते गए अपने, भर दिए घर। अब घर भर दिए साधनों से, सुविधाओं से, बैठने की जगह नहीं, योग लगाने की, खड़े होने की जगह नहीं, व्यवस्थित क्या करेंगे उसको, वो तो घर गोदाम बना हुआ है। इसलिए ध्यान रखना, हमारी अवस्था भी बताती है, थोड़ा त्याग वृत्ति रखो जिन चीजों की जरूरत नहीं। दादी जी का एक बहुत अच्छा शब्द था, अगर कोई चीज तुम 6 मास तक यूज नहीं करते हो तो अपने पास क्यों रखा हुआ है, दान कर दो, सेवा में लगा दो, इधर उधर दे दो, बंधा करके अपने पास, समेट करके अपने पेटी में संभाल के रखने के, जगह भी जा रही है, संकल्प भी जा रहे हैं, उसको उसी समय सफल करो। तो ठीक, घर को गोदाम नहीं बनाओ, बड़ा स्वच्छता का वातावरण बनाओ, व्यवस्थित सब चीजें हों, जो चीज जहां से उठाई जाए वहीं रख दी जाए, लगता कुछ समय नहीं लेकिन व्यवस्था अगर अच्छी करनी है तो स्वच्छता, मन की जितनी स्वच्छता है, अंदर के विचारों की स्वच्छता है, बुद्धि की स्वच्छता है, उतनी घर की और अपने बिस्तर की, अपने सब व्यवहार की स्वच्छता जरूरी है। और दूसरा चाहिए परिवार के अंदर रूहानियत, हमारे नियत के अंदर जो है वो जिस्मानियत जो है, लौकिकता है, वो अब समाप्त हो जानी चाहिए। लौकिक रीति से हंसना, बोलना, बैठना, बात करना, ड्रेस पहनना, बाबा कहता अभी मर जीवा, मर गए ना, उसे लौकिक से मर गए, अभी अलौकिक जीवन है, और इस अलौकिक जीवन में रूहानियत भी बहुत आवश्यकता है। जितना रूहानियत आ जाएगी, आत्मा को देखने का अभ्यास, आत्मा होकर के रहने का अभ्यास, इस शरीर से न्यारे रहने का अभ्यास, अंतर्मुखी बना देगा, बाह्यमुक्ता खत्म हो जाएगी, हंसी मजाक की बातें खत्म हो जाएंगी, व्यवहारिक जीवन बहुत शुद्ध और अच्छा हो जाएगा। तो लौकिकता समाप्त और रूहानियत आ जाए, स्वच्छता, रूहानियत और सच्चा निस्वार्थ स्नेह, निस्वार्थ स्नेह। लौकिक संबंधों में कुछ न कुछ स्वार्थ रख करके हम स्नेह रखते आए हैं, बच्चों की पालना करेंगे तो भी एक स्वार्थ रहेगा, ये बड़ा होगा तो मदद कर देगा, ये करेगा, ये करेगा, कुछ न कुछ भावनाएं रहती हैं। इस अलौकिक परिवार के अंदर इस प्रकार का कोई स्वार्थ किसी से नहीं है, साथ सब देते हैं, मदद सब करते हैं, आवश्यकता के समय सब एक दूसरे के साथ हैं, लेकिन कोई व्यक्तिगत स्वार्थ रख करके किसी की सेवा नहीं कर रहा है। तो अगर लौकिक परिवारों के अंदर भी हम सब के अंदर आ जाए, निस्वार्थ रूप से हम स्नेह दें, पालना दें, तो जो रूहानियत और निस्वार्थ स्नेह है वो व्यवस्थाओं को बहुत अच्छा बना देता है। तो मैंने देखा इन दादियों ने उस जीवन में बहुत अच्छी पालना और स्नेह देने का अभ्यास किया। आप पालना अगर सुनेंगे दादियों की, इतनी वंडरफुल पालना रही है, हम लोग सुबह सुबह जाकर के धोबी घाट करते थे, धोबी घाट यहाँ होता था, कपड़े ऐसे चटके थे, अभी तो मशीनें लग गई, साधन आ गए, 10-11 साल धोबी घाट किया, सबके कपड़े धोते, शाम को इकट्ठा करते थे, भट्टी चढ़ाते थे साबुन सोडा में, नीचे गर्म पानी घर के उबालते थे, और रात सवेरे सवेरे सटका लगाते थे। दादी मुरली पूरी होते ही बहुत गरम गरम हलवा बनवाती थी, बेचारे ठंडे में काम कर रहे हैं, खड़े हैं, और पहले पहले आकर के बहुत प्यार से अपने हाथ से बिठा के हलवा खिलाएंगे सबको। जिन्होंने जिन्होंने धोबी घाट में छटका लगाया वो पहले डबल हलवा खाओ। पालना, स्नेह और पालना के आधार से वो कार्य ऐसा लगता था जैसे खेल कर रहे हैं, ऐसा नहीं लगता था कोई बोझ आ गया है, ये क्यों करूं, ये सीख के थोड़ी आए हम, ये काम करने थोड़ी आए। कई आ जाते हैं ना बहने थोड़ा थोड़ा रहती थोड़ा समय सेंटर पर, सोचती ये काम के लिए मैं आई हूं क्या। कोई भी कार्य है, स्थूल या सूक्ष्म, कोई भी यज्ञ का कार्य है, बाबा कहते हैं हर सेवा की 100% मार्क्स है, सिर्फ वो सेवा दिल से की जाए। वो सेवा अगर दिल से की गई, भावना से की गई, तो मार्क्स चाहे वो झाड़ू लगाने की सेवा है, चाहे बर्तन मांजने की सेवा है, चाहे बाथरूम साफ करने की सेवा है, लेकिन वो दिल और भावना के आधार से की गई है। इसलिए भाषण कराना हो या राशन या बासन मांजना हो, सबकी सेवा की मार्क्स समान हो जाती है। इसलिए हम सब अपनी अवस्थाओं को बिगड़ने न दें, ये सेवा मेरी नहीं, ये सेवा उसकी है, ये कार्य मेरा नहीं, ये कार्य उसका है, ये बंटवारा नहीं करो। हर एक कार्य में आगे आकर हाँ जी करके दुआएं ले लो, सबकी दुआएं मिलती चले, ये स्थिति ये अवस्था बहुत अच्छी बन जाएगी। कुछ भी हो जाए, हम लोगों का ये ध्यान रहता है कुछ भी हो जाए होने दो, स्थिति बिगड़नी नहीं चाहिए। क्यों जल्दी जल्दी चिड़चिड़े हो जाए, गुस्से में आ जाए, जोश आ जाए, वो अवस्था अच्छी है क्या? तो जोश में गुस्से में आकर के कोई काम किसी से कराओ, थोड़े देर के लिए ठीक करेगा, आप हटोगे फिर और बिगाड़ देगा। इसलिए ध्यान रखना, बाबा ने सब दिव्य गुणों से हमारे अवस्था को मजबूत शक्तिशाली एक रस बनाया है, और जिन बच्चों ने उन बातों पर ध्यान दिया, अंडरलाइन किया है, उनका हर कार्य सब व्यवस्थित रहता है, उनकी दिनचर्या व्यवस्थित है। अमृत वेले उठना है, फिर क्लास में जाना है, मेरे पास समय नहीं है, मैं बहुत बिजी हूँ, कई लोग बहुत दिखाते हैं मैं बहुत बिजी हूँ, काम कुछ नहीं करेंगे और दिखाएंगे मैं बहुत बिजी हूँ। ध्यान रखना है, बिजी भले कितना भी हो लेकिन नेचर इजी होनी चाहिए, और अगर इजी नेचर है तो कितने भी कार्य आते हैं सब ऐसे ऐसे होते फटफट फटफट होते हैं। मेरे कोई काम मिलता है ना, कोई सेवाएं मिलती हैं, मैं ये नहीं कहता हूँ दादी बहुत काम पड़ा है नहीं होगा, तो दे दो हो जाएगा, लाओ हो जाएगा, और जो कहने वाले उनको ही मिलता है, जो नहीं कहने वाले हो तो और फ्री हो जाते हैं, और हम कहते हैं हमारा भाग्य है। हमारे जितने सेवा साथी हम कहते हैं सब बिजी तो रहे, कम से कम फ्री रहेंगे तो इधर उधर की बातें सोचेंगे और दिमाग खाएंगे, इसलिए ठीक है सब बिजी रहो। बहुत सरल नेचर से, इजी से सब कार्य अपने आप होता है। आज मैं आपके साथ बैठा हूँ, मेरे पास बहुत सारी जवाबदारियां, आप सब जानते हो कितनी सारी बायोडाटा पढ़ लिया, कराने वाला तो बाबा है, मैं कुछ नहीं करता, लेकिन आज मैं जून में बैठा हूँ, मेरी सितंबर की मूलियां सेट हैं। 3 महीने पहले मेरे को ये नहीं टेंशन है कि सितंबर आ रहा है, 3 महीने पहले हमको सब तैयारी करनी है, ईमेल भेजना है, सारी 18 भाषाओं में तो इंटरनेट पर है मुरली, और सबकी जवाबदारी मेरे हाथ में है, सबको देना है पहले से, क्या भेजना है, क्या वरदान देना, क्या स्लोगन देना, सब फिट है, तैयार है। जुलाई में क्या होमवर्क जाएगा, अगस्त में क्या जाएगा, सितंबर में क्या जाएगा, पहले से ही बाबा कहता है एकदम निश्चिंत रहना, तो क्या करो स्थिति अच्छी रखो, अवस्था अच्छी रख करके एकांत में बैठ करके सब काम कर लो। और इतना अच्छी तरह से बाबा कराता है, करण करावनहार तो वो है, हम लोग क्या करेंगे, हम अपनी स्थिति को बस एक रस रखें, बस शांति से बैठ जाओ, कैसे टचिंग आती है और टचिंग से कार्य होता है, अपने आप होता है, मिक्स नहीं करो अपनी बुद्धि को, मैं बहुत जानता हूं, मैं होशियार हूं, मैं समझदार, कभी कभी मिक्स हो जाती है बुद्धि, फिर बाबा किनारा कर लेता है, इसको कर लेने दो। हम सब बहुत सरलता से, बहुत निर्माणता के साथ बाबा का आह्वान करें, और बाबा को कहें बाबा ये काम तो आपका है, हाथ हम देते हैं आपको, आगे कर लो, और सचमुच बहुत अच्छा करते, सब अच्छे से अच्छा हो रहा है, कितने भी कार्य हैं सब होते हैं, लेकिन हम तनाव में ना आ जाएं, ये काम पड़ा है, ये काम पड़ा है, अभी आज मेरे को यहाँ क्लास कराना है, आज वो पीस पार में क्लास कराने शाम को जाना है, नीचे शांति वन भट्टी चल रही है, परसों इधर जाना है, सब कार्य और सब बहुत सुचारू रूप से हो रहे हैं, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, सिर्फ अवस्था को बिगाड़ते नहीं है, हाँ जी करते हैं और थोड़ा सा मैनेज कर लेते हैं, बस हो जाएगा, सब हो जाता है। करने वाले मददगार भी समय पर मिल जाते हैं, साथी मिल जाते हैं, कराने वाला बाबा करा लेता है। तो हम सब अपनी अवस्था पर ध्यान दें, और अवस्था जमाने के लिए ही आपको भट्टी मिली है। एक रस अचल अडोल स्थिर खुशनुमा स्थिति अवस्था बन जाए, बस इसके लिए तो आए हो भट्टी में। सिर्फ योग लगाना नहीं, सिर्फ मैं आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप हूँ, इससे क्या होगा? योग ऐसा लगे जो योग से सब मार्ग सहज और स्पष्ट दिखाई देने लगे, लाइन क्लीन हो जाए, स्वच्छ हो जाए, बुद्धि साफ हो जाए, टचिंग आने लगे, कर लो, हो जाएगा। बुद्धि की लाइन अगर क्लियर है, स्पष्ट है, बाबा से आप टचिंग ले रहे हैं, तो आपका कार्य कहीं रुक सकता है क्या? कोई विघ्न आ सकता है? अपने आप सब हो जाएगा। जहां हमारी बुद्धि थकी हुई है, उलझी हुई है, प्रश्नों में मूंझ रही है, वहां पर कई कार्य होने वाले भी रुक जाते हैं। इसलिए ध्यान रखना, हम सब बहुत सरल नेचर बनाए, इजी रहें, नम्रचित रहें, मधुर व्यवहार करें, हमारे सब कार्य सब नेचुरल और ऑटोमेटिक हो जाए, सब व्यवस्थाएं अच्छी हो जाएंगी। कभी भी आज तक मैं नोट करता हूँ, तीनों जगह सब प्रकार के डिपार्टमेंट चल रही हैं, कोई ये नहीं कह सकता ये काम इनका अभी तक अधूरा है, पेंडिंग पड़ा हुआ है, किया नहीं, इनको ये शौक है, यहाँ जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं, कोई कंप्लेन नहीं आ सकती। अगर हमारी अवस्था अच्छी है तो सब कार्य ऑटोमेटिक होते हैं, सब साथी सहयोगी मिलते हैं, कराने वाला बाबा करा रहा है, सब होता है। लेकिन अवस्था अच्छी रखें, व्यवस्थाएं सब ठीक हो जाएंगी। ओम शांति। चलो 3 मिनट के लिए इस शरीर से अलग हो जाओ, बाबा के पास पहुंच जाओ, अनुभव करो मैं इस भ्रकुटी की कुटिया में बैठी हुई चैतन्य स्वरूप आत्मा, एक जगमगाता हुआ सितारा, इस देह से न्यारा, अति सूक्ष्म ज्योतिर्बिंदु स्वरूप में स्थित होकर ज्ञान सूर्य बाबा को अपने सामने लेकर आओ। वो चमकता हुआ दिव्य सितारा, सर्व शक्तियों से संपन्न, हम सबके प्यारे पिता परमात्मा की वो सर्व दिव्य शक्तियां मुझ आत्मा पर किरणों के रूप में आती जा रही हैं। मैं आत्मा सर्व शक्तियों से संपन्न, मास्टर सर्व शक्तिवान बन गई हूँ।
भाई साहब को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं।
धन्यवाद।